नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जीवन में कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और इसके साथ मैं उन सभी श्रोता मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर हमें पत्रों के माध्यम से अपनी आशीषों को हम तक पहुँचाते हैं। यदि आपने भी इस कार्यक्रम को सुना है, सुन रहे हैं तो निश्चय ही अपनी बातों को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने एक अध्याय उसके 1 से 5 पद तक का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम दूर दराज में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेडियो के माध्यम से हम आपके वचन को सुनने और सीखने पाते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए है, आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हाँ प्रभु जी, नीति वचन की पुस्तक से आप हमें सिखाएं, ताकि हम अपने जीवन में नए बातों को सीख सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी प्रकार के ऐसे परिस्थिति या दबाव में हैं। आप उनकी सहायता करें, उनकी सुधि लें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में बलवंत होने पाए। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, अब सुलेमान हमें महापुरुषों का एक गुण बताता है। बुद्धिमान मनुष्य वह है जो मन में कभी नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। जी हाँ, मैं टीवी पर एक मशहूर गायक को सुन रहा था। उसकी विशेषता थी उसका अहंकार। वह सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। मेरे विचार में उससे कोई कुछ नहीं कह सकता था। नीति वचन की शिक्षा है, बुद्धिमान सुनकर अपनी बुद्धि बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, ध्यान दीजिए, इस संपूर्ण पुस्तक की यही चुनौती है। सुलेमान कहता है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप इस पुस्तक की शिक्षा स्वीकार करेंगे। परमेश्वर के आत्मा के पास नीति वचनों में अनेक चयनित शिक्षाएं हैं। ये महान सत्य छोटे वाक्यों में व्यक्त हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हम नीति वचन 1 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यही विचार नीति वचन 25 उसके 2 पद में भी व्यक्त है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। मुझे यह शिक्षा बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर ने सुसमाचार दिया कि छत से प्रसारित किया जाए, परंतु परमेश्वर के वचन में हीरे जैसे महान सत्य निहित हैं। परमेश्वर ने धरती पर हीरे नहीं बिखेरे। हीरे और अनमोल बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी हैं कि मनुष्य उसकी खोज करे। सोना, हीरे और अन्य बहुमूल्य वस्तु खोदकर उन्हें खोजी जाती है। तेल को भी खोदकर निकाला जाता है। यह परमेश्वर की रीति है। किसी बात को गुप्त रखना परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर के वचन के लिए आपका संपूर्ण अध्ययन आवश्यक है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा था कि धर्मशास्त्र में तुम अनंत जीवन खोजते हो। उसने यह नहीं कहा कि धर्मशास्त्र की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिल गया, परंतु तुमने वास्तव में धर्मशास्त्र की खोज नहीं की है। आप बाइबल पढ़ते तो रहते हैं, परंतु आपको उसमें निहित संदेश नहीं मिलता है, या आपको नहीं मिला है। वहां जो वास्तविक धन है वह प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मेरे मित्रों, यदि आपने बाइबल में प्रभु यीशु को नहीं पाया तो आप हीरों की खोज नहीं कर रहे हैं। आपने गहरी खुदाई अभी तक नहीं की है जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझें। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इस महान सत्यों को अपने इस पुस्तक में छिपा रखा है। आज की त्रासदी यह है कि न तो प्रचार मंच पर और न ही बेंचों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। परमेश्वर के वचन की गंभीर और एकाग्रचित समझ अति आवश्यक है। आज हम लोगों का सोचना है कि एक बार बाइबल से कुछ पढ़ा तो आपकी समझ में सब कुछ आ गया। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप अध्ययन बिना परमेश्वर के वचन में से मोती नहीं निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के फ्लोरिडा नगर में थॉमस एल्वा एडिसन के घर और प्रयोगशाला में लोग जाते हैं और वहां पर आनंददायक भी लगता है। अब वहां एक संग्रहालय है। मेरे आश्चर्य का विषय यह है कि कृत्रिम रबर की खोज जो उसने की थी, एडिसन लगभग एक उपलब्ध वस्तु पर प्रयोग करके कृत्रिम रबर की खोज में था और आप जानते हैं कि उसने पीले फूल में से कृत्रिम रबर बनाया। यदि मैं होता तो शायद फूल में रबर खोजना मेरा अंतिम प्रयास होता। मैं सोच रहा था कि उन्होंने कृत्रिम रबर की खोज में कितना समय लगाया, जबकि परमेश्वर का वचन जिसमें वास्तविक खोज है और अध्ययन की अनेक मूल्यवान बातें उसमें छिपी है, कितना कम समय हम उसमें देते हैं। हमारे लिए नीति वचन की पुस्तक भी एक चुनौती है। गहराई में जाओ, उसमें गंभीर अध्ययन की चुनौती है। दूसरा तीमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरे मित्रों, यही आपके लिए और मेरे लिए बहुत आवश्यक है। अब हम आगे आते हैं जो इस पुस्तक का मुख्य पद है। नीति वचन 1 अध्याय उसका 7 पद लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल अर्थात आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग अर्थात मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। यह बड़ी रोचक तुलना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग अर्थात मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं और समझते हैं। वे कभी भी नहीं सीखते हैं। मैं आपको एक चुटकुले के द्वारा इसका उदाहरण देता हूं। एक मनुष्य कार चला रहा था कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया। उसने टायर के नट खोले और पहिए के ढक्कन में रख दिए। अब दूसरा पहिया लेने के लिए उठा तो ठोकर लगने के कारण उसके नट बोल्ट नाले में गिर गए। अब वह सिर खुजलाता सोच रहा था कि क्या करें। सड़क की दूसरी ओर पागलखाना था। वहां एक पागल खड़ा उसे देख रहा था। उसने कहा, तीनों पहियों में से एक एक नट निकाल कर लगा दे और जब आगे जाकर दुकान मिले तो नए नट खरीद कर लगा लेना। वह सोचने लगा, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। उसने उस पागल मनुष्य से कहा, आप अंदर हैं और मैं बाहर हूं, परंतु मेरी बुद्धि में यह बात नहीं आई। उसने कहा, मैं पागल हूं, मूर्ख नहीं। नीति वचन की यह पुस्तक आपको और मुझे जीवन में मूर्खता से उबारना चाहती है। मेरे विचार में हम इसमें सहायता का महान स्रोत पाएंगे। इस पुस्तक में मूर्खता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। यह एक अति महत्वपूर्ण पारिवारिक संबंध है। हम में से अनेक विश्वासी माता पिता की संतान रहे हैं। आपने जो अपने माता पिता से सीखा है उसे संभवतः कभी भूला ना पाएंगे और न ही उससे कभी भटकेंगे। दूसरी ओर परमेश्वर उन माता पिता पर दया करे जो अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे घर से बाहर परीक्षा। नीति वचन 1:10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। अब घर से बाहर की बात आती है। जब बच्चा बाहर जाता है तब वह सबसे पहले किससे भेंट करता है? एक पापी से उसकी भेंट होना सामान्य सी बात है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति पाप में गिरी हुई है। वह प्रभु यीशु के निकट नहीं आई है। हम सब पापी हैं, परंतु वह बालक उद्धार से वंचित मनुष्यों के संपर्क में आता है। अब उसे क्या करना चाहिए? उनकी बात को नहीं मानना है। आपको स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि आप इस पुस्तक में ऐसा नीति वचन भी देखेंगे जो बाइबल के नायकों से मेल खाते हैं। यह भी संभव है कि आप अपने मित्रों से मेल खाता हुआ नीति वचन भी देखेंगे, परंतु उन्हें बताना आप न चाहेंगे। यह एक नीति वचन है जो बाइबल के किसी नायक से मेल खाता है। आपके विचार में क्या यह नीति वचन यूसुफ के लिए उपयुक्त नहीं? जब वह मिस्र देश में दासत्व में अर्थात गुलामी के लिए बेच दिया गया था और वहां पोतीफर की पत्नी उसे ललचा रही थी, परंतु उसने उसकी बात न मानी। यह नीति वचन उसके अनुभव का उदाहरण है। नीति वचन 1:11-13 में लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। मेरे मित्रों, पापी की योजना एवं कार्यक्रम ऐसे ही होते हैं कि बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त किया जाए। वह किसी न किसी पर निर्भर करके जीवन निर्वाह करता है और अपनी समृद्धि के लिए किसी और को कष्ट देता है। नीति वचन 1:14 में लिखा है, तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। ध्यान दीजिए, यह आज की धारणा है, हम सबों का एक ही बटुआ हो। वे जो इस सिद्धांत पर चलते हैं स्वयं कुछ नहीं करते, वे एक ही लालसा करते हैं कि कोई कमा कर लाए और उन्हें दे। वे अपना योगदान नहीं करते हैं। यह है तो अनर्थकारी सिद्धांत, परंतु युवाओं में यह एक आम अभ्यास है। यह आज की युवा मनोवृत्ति है, येन केन प्रक्रेन, कुछ किए बिना कुछ पाओ। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसके पिता की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के बाद मेरी माँ मेरी बहन को और मुझे लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। मुझे पढ़ाई त्याग कर काम करना पड़ा क्योंकि हमें पैसों की आवश्यकता थी। मुझे एक दुकान पर नौकरी मिली। मैं अन्य युवकों के साथ वहां काम करने लगा। उन्होंने एक ऐसी विधि खोजी थी जिसके द्वारा वे टॉफियों के डब्बे में से टॉफी निकालते थे। वह थोक विक्रेता की दुकान थी और प्रत्येक डब्बे से एक टॉफी निकालकर वे अपने लिए अनेक डब्बे तैयार कर लेते थे। पहले दिन तो मैंने उनका साथ दिया, परंतु उस रात मेरे विवेक ने मुझे कोसा और मैंने निर्णय लिया कि वह काम अनुचित था। अगले दिन मैंने ईमानदारी से काम किया, परंतु टॉफियां लौटा नहीं पाया क्योंकि मैंने उनमें से कुछ टॉफियां खा ली थी। फिर ऐसा हुआ कि प्रावधान ने मुझे 6 टॉफियों का डब्बा थोक के भाव पर ही देना आरंभ कर दिया और मैं उन्हें कार्यालय के कर्मियों को बेच देता था। इस प्रकार मुझे एक डब्बा मुफ्त बच जाता था। मैं इस प्रकार अपनी टॉफियां परिश्रम करके कमाता था। मेरे विचार में यही सही था। मेरे मित्रों, उसने मुझे ये बातें बताई। गलत करने वालों की बातों में आ जाना युवाओं के लिए बड़ा आसान काम होता है। काम करते समय भी समय गंवाने वालों की संगति में पड़ जाना बड़ा आसान होता है। ऐसे कामों के साथ देना या कामों में साथ रहना आसान है। यही कारण है कि जब युवक घर से बाहर निकलता है तो ऐसे कामों में साथ देना उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सिगरेट पीते हैं या किसी प्रकार के नशे के आदि हैं, तो अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करो। जब वे नहीं करते हैं तो उन्हें अपने संगति से दूर कर देते हैं, जिसके डर से वह युवा उनके साथ में नशे करना आरंभ कर देता है और इसकी खबर माता पिता को नहीं होती है, क्योंकि बुरा हमेशा बुरा ही होता है। आइए अब हम आगे पढ़ेंगे नीति वचन 1 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। बाइबल ऐसे अलगाव पर अति स्पष्ट है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। यद्यपि वह मूर्ति पूजा के विषय में कह रहा है, परंतु यह विचार यहाँ भी लागू होता है। उस दुष्ट संगति से अलग रहो जिसमें तुम अब तक थे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उस दुष्ट संगति में न रहें। नीति वचन 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद में आगे लिखा है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपने ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। ऐसे काम आपको विनाश की ओर ले जाएंगे, आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि बुरा का परिणाम बुरा ही होता है, इसे हम जानते हैं, तो क्यों ना हम इससे दूर हो जाएं। नीति वचन 1 अध्याय के 19 पद में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। जी हाँ, यह लालच के मूल का तिरस्कार है। आज का हमारा युग भौतिकवाद का है, और एक कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखा कि हमें कॉलेज को व्यर्थ के भौतिकवाद से मुक्त रखना है, अर्थात रखना चाहिए। इसके लिए उनके विचार में धर्म की शिक्षा आवश्यक है। कोई तो है जो जाग रहा है। जी हाँ, आज एक महापाप लालसा है। नीति वचन इसी का तिरस्कार कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं बुद्धि का निमंत्रण। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय के 20 पद में लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि युवकों को कुछ सीखने का निमंत्रण दे रही है, उन्हें उसकी शिष्यता में आना है। यदि आपको कुछ सीखना है तो नीति वचन 1 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ध्यान दीजिए, भोले अर्थात मूर्ख। बुद्धि पूछती है, तुम कब तक मूर्ख बने रहोगे? एक 20 वर्षीय युवक ने मुझे बताया कि वह 3 वर्ष नशीले पदार्थों के सेवन का आदि था। वह बार बार कहता था, मैं कैसा मूर्ख था। यह तो मुख्य प्रश्न है, तुम कब तक मूर्खता से प्रीति रखोगे? तुम कब तक बुद्धि की पाठशाला में पढ़ोगे? नीति वचन 1 उसके 23 पद में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। अब अध्याय के अंत में आप आ जाइए। नीति वचन 1 अध्याय के 32 पद में वचन में लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु से विलय होना आत्मिक आत्महत्या है। आप कुछ भी कर लें, अगर प्रभु के निकटता में नहीं है तो निश्चय जाने कि आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। नीति वचन 1:33 में लिखा है, परंतु जो मेरी बातें सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। कैसी उत्तम बात यहां पर हमें बताई गई है। आज हम बैंकों के खातों से मनुष्य का मान आंकते हैं, उसका घर, उसकी कार आदि। क्या हम मूर्खों की समृद्धि का आनंद ले रहे हैं? क्या हम मूर्खों के स्वर्ग में वास कर रहे हैं? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको बुद्धि की उस पुकार को सुनना है, उस आवाज को ग्रहण करना है, ताकि हम भी परमेश्वर के लिए जी सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा जीवन और आपका जीवन एक उत्तम जीवन हो, प्रभु की निकटता का जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, न कि उन मूर्खों की तरह, न कि उन लोगों की तरह जो अपने जीवन को विनाश की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज मैं अपने उन जवान भाई बहनों से कहता हूं कि आप यदि गलत मार्ग पर हैं तो इस आवाज को सुन लें, प्रभु के पास आए, उससे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको चाहता है, आपके जीवन में आशीषों को उंडेलना चाहता है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपने अवश्य ही इस विषय पर एक सही निर्णय लिया है और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया।